नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। निक वेंडोम की विंडोज 11 इन इजी स्टेप्स, विंडोज 11 के आरंभिक उपयोग और रोजमर्रा के कामों पर केंद्रित एक व्यावहारिक कंप्यूटिंग गाइड है। यह पुस्तक डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों पर नए ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसका मुख्य पाठक वर्ग नए उपयोगकर्ता, वरिष्ठ पाठक और विंडोज के पुराने संस्करण से अपग्रेड करने वाले लोग हैं। पुस्तक का उद्देश्य तकनीकी शब्दावली का बोझ डालना नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नियंत्रणों, मेनू और सामान्य कार्यों को क्रमबद्ध ढंग से समझाना है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार इसमें डेस्कटॉप, एट स्तर तरबातन और स्टार्ट मेनू, विजेट्स, एप्स, फाइल एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, संचार, नेटवर्किंग तथा सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं। इजी स्टेप्स श्रृंखला की शैली के अनुरूप इसका जोर छोटे चरणों, दृश्य संकेतों और तत्काल उपयोगी कार्यों पर है। यह किसी उन्नत सिस्टम प्रशासन या प्रोग्रामिंग पुस्तक की जगह नहीं लेती, बल्कि विंडोज 11 के मूल वातावरण में आत्मविश्वास से काम करने का परिचय देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले डेस्कटॉप, स्टार्ट मेनू और टास्क बार से नए इंटरफेस की समझ। विंडोज 11 में सबसे पहले उपयोगकर्ता को उसके बदले हुए इंटरफेस से तालमेल बैठाना पड़ता है और पुस्तक इसी आधारभूत आवश्यकता को महत्व देती है। डेस्कटॉप केवल फाइलें रखने की जगह नहीं है, बल्कि खुले प्रोग्राम, नोटिफिकेशन, खोज और त्वरित नियंत्रणों तक पहुंच का केंद्र है। स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू के माध्यम से एप्स खोजने, पिन किए हुए विकल्पों तक पहुंचने और हाल में इस्तेमाल की गई सामग्री देखने की प्रक्रिया समझना नए उपयोगकर्ता के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। टास्क बार का महत्व भी व्यावहारिक है, क्योंकि यही चल रहे एप्स के बीच स्विच करने और अक्सर उपयोग होने वाले प्रोग्रामों को तुरंत खोलने का साधन बनता है। पुस्तक का संभावित लाभ यह है कि वह इन हिस्सों को अलग अलग तकनीकी विशेषताओं की तरह नहीं, बल्कि काम शुरू करने की दैनिक व्यवस्था की तरह रखती है। विंडोज के पुराने संस्करण से आने वाले पाठक के लिए यह दृष्टि भ्रम कम करती है, क्योंकि वह नए स्थानों और नए दृश्य विन्यास को परिचित कामों से जोड़ती है। इस विषय का मूल निष्कर्ष है कि इंटरफेस को पहचानना आगे की हर गतिविधि, जैसे फाइल प्रबंधन, वेब ब्राउजिंग और सेटिंग्स बदलने की पूर्व शर्त है। दूसरा, एप्स मानक नियंत्रण और व्यक्तिगत अनुकूलन का व्यावहारिक उपयोग पुस्तक विंडोज 11 को केवल एक स्थिर स्क्रीन के रूप में नहीं, बल्कि एप्स के माध्यम से काम करने वाले वातावरण के रूप में प्रस्तुत करती है। किसी ऐप को खोलना, बंद करना, विंडो का आकार बदलना, उसे छोटा करना या कई खुले कामों के बीच जाना, ये सभी बुनियादी क्रियाएं हैं, पर नए उपयोगकर्ता के लिए इन्हीं में सबसे अधिक झिझक होती है। मानक नियंत्रणों पर ध्यान देने का अर्थ है कि बटन, मेनू, स्क्रॉल बार, डायलॉग बॉक्स और खोज क्षेत्र जैसे तत्वों की सामान्य कार्य प्रणाली समझाई जाए, ताकि पाठक हर नए ऐप को बिल्कुल अपरिचित न माने। अनुकूलन वाला पक्ष उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि, रंगों, टास्क बार और अन्य व्यक्तिगत विकल्पों के जरिए अपने कार्यक्षेत्र को सुविधाजनक बनाने की दिशा देता है। इसका व्यावहारिक तर्क स्पष्ट है। एक ऐसा इंटरफेस जो उपयोगकर्ता की जरूरत और देखने की सुविधा के अनुकूल हो, उसमें गलतियां कम होती हैं और बार बार की जाने वाली क्रियाएं तेज होती हैं। पुस्तक संभवतः अनुकूलन को सजावट भर नहीं मानती, बल्कि पहुंच और उपयोगिता का हिस्सा बनाती है। हालांकि यह उन्नत उत्पादकता स्वचालन के बजाय सामान्य उपयोग पर केंद्रित गाइड है, इसलिए पाठक को इसे रोजमर्रा की दक्षता के आधार के रूप में देखना चाहिए। तीसरा, फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित रखने की क्षमता। किसी भी व्यक्तिगत कंप्यूटर के उपयोग में फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन केंद्रीय कौशल है, और विंडोज 11 इन इजी स्टेप्स इस विषय को अलग महत्व देती है। दस्तावेज, चित्र, डाउनलोड और अन्य सामग्री समय के साथ तेजी से जमा होती है। यदि उपयोगकर्ता को यह न पता हो कि सामग्री कहाँ सहेजी गई है, कैसे खोजी जाए या किन फोल्डरों में रखी जाए, तो कंप्यूटर उपयोग अनावश्यक रूप से उलझा हुआ लगने लगता है। फाइल एक्सप्लोरर के माध्यम से स्थानों को देखना, फोल्डर बनाना और सामग्री को व्यवस्थित करना इस समस्या का सीधा समाधान है। पुस्तक की उपयोगी विशेषता यह है कि यह इस काम को अमूर्त डेटा प्रबंधन की भाषा में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर किए जाने वाले स्पष्ट कार्यों के रूप में समझाने का प्रयास करती है। फाइल और फोल्डर के अंतर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि फाइल वास्तविक सामग्री है, जबकि फोल्डर उसे श्रेणीबद्ध रखने का ढांचा देता है। नामकरण और सुव्यवस्थित संग्रह की आदत बाद में खोज और साझा करने को आसान बनाती है। इस विषय की सीमा यह है कि पुस्तक का लक्ष्य पेशेवर बैकअप नीति या जटिल भंडारण प्रशासन नहीं है, फिर भी सामान्य घरेलू और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के लिए सही स्थान पर सामग्री रखना उसे ढूंढना और अनावश्यक अव्यवस्था से बचना सबसे उपयोगी डिजिटल आदतों में है। चौथा, डिजिटल जीवन, माइक्रोसॉफ्ट एज और ऑनलाइन संचार के साधन। पुस्तक विंडोज 11 को कामकाजी सिस्टम के साथ साथ डिजिटल जीवन के केंद्र के रूप में भी देखती है। इस दायरे में तस्वीरें, मनोरंजन, वेब ब्राउजिंग और संपर्क के साधन आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज पर ध्यान इसलिए प्रासंगिक है कि वेब ब्राउजर ही समाचार, जानकारी, सेवाओं और अनेक ऑनलाइन कार्यों तक पहुंच का मुख्य माध्यम है। ब्राउजर का उपयोग समझने में वेबसाइट खोलना, खोज करना, टैबों के बीच जाना और ऑनलाइन जानकारी को व्यवस्थित ढंग से देखना शामिल होता है। संचार संबंधी भाग ईमेल और वीडियो या टेक्स्ट आधारित संपर्क जैसी सामान्य जरूरतों की पृष्ठभूमि बनाता है। यह विशेष रूप से उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो कंप्यूटर को केवल दस्तावेज लिखने की मशीन मानते रहे हैं और अब उसे परिवार, सेवाओं तथा इंटरनेट से जुड़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। पुस्तक की सीमा और ताकत दोनों इसकी सरलता में है। यह इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म या सोशल सेवा का विस्तृत संदर्भ नहीं देती, बल्कि विंडोज के भीतर उपलब्ध सामान्य प्रवेश बिंदुओं और उपयोग के सिद्धांतों को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार पाठक को यह समझ मिलता है कि ब्राउजर, मीडिया और संचार एप्स अलग अलग विषय नहीं है, बल्कि एक ही डिजिटल कार्य प्रवाह के पूरक अंग है। अंत में, नेटवर्किंग, साझा उपयोग और सिस्टम सुरक्षा की मूल सावधानियां। विंडोज 11 का उपयोग अक्सर इंटरनेट, घरेलू वाईफाई, प्रिंटर या अन्य उपकरणों से जुड़कर किया जाता है, इसलिए नेटवर्किंग और साझा उपयोग का परिचय केवल अतिरिक्त सुविधा नहीं बल्कि आधुनिक कंप्यूटिंग की बुनियादी जरूरत है। पुस्तक इस क्षेत्र में उपयोगकर्ता को यह समझने में मदद करती है कि उपकरण को नेटवर्क से जोड़ना, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना और सामग्री साझा करना किन सामान्य सेटिंग्स से संबंधित है। लेकिन जुड़ाव के साथ सुरक्षा का प्रश्न भी आता है। सिस्टम और सुरक्षा पर केंद्रित भाग का महत्व इस बात में है कि नया उपयोगकर्ता अपडेट, पासवर्ड, सुरक्षित सेटिंग्स और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना सीखे। ऐसी गाइड का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि उपयोगकर्ता को नियमित और समझदारी भरी आदतों की ओर ले जाना है। उदाहरण के लिए, सिस्टम को अद्यतन रखना और निजी जानकारी साझा करने से पहले विचार करना सामान्य सुरक्षा व्यवहार है। पुस्तक का दायरा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता, एंटरप्राइज नेटवर्क या फोरेंसिक जांच तक नहीं जाता, फिर भी यह सीमा उचित है क्योंकि घरेलू उपयोगकर्ता को पहले यह जानना जरूरी है कि सुविधा और सुरक्षा साथ साथ चलती है। नेटवर्क साझा करने या ऑनलाइन सेवा इस्तेमाल करने की क्षमता तभी उपयोगी है जब उपयोगकर्ता नियंत्रणों और सावधानियों की बुनियादी भूमिका समझता हो। निष्कर्ष में, विंडोज 11 इन इजी स्टेप्स उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त है जो विंडोज 11 को पहली बार समझ रहे हैं, नया लैपटॉप या डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब विंडोज के पुराने संस्करण से बदले हुए इंटरफेस में आए हैं। वरिष्ठ पाठकों और तकनीकी शब्दों से असहज पाठकों के लिए इसकी चरणबद्ध शैली विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक डेस्कटॉप से काम शुरू करने, ऐप्स संभालने, फाइलें व्यवस्थित रखने, इंटरनेट चलाने और सामान्य सुरक्षा विकल्पों को समझने जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को एक ही मार्गदर्शिका में देख सकता है। इससे अलग अलग वेबसाइटों या बिखरे हुए वीडियो निर्देशों पर निर्भरता घट सकती है। समान श्रेणी की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर विषयों के चयन और प्रस्तुति में है। यह विंडोज 11 की हर गहरी तकनीकी परत को समेटने का दावा करने के बजाय सामान्य उपयोगकर्ता के सामने आने वाले कार्यों को छोटे और क्रमबद्ध चरणों में रखती है। रंगीन स्क्रीनशॉट और दृश्य आधारित इजी स्टेप्स प्रारूप भी ऐसे पाठकों के लिए उपयोगी है जिन्हें केवल पाठ पढ़कर स्क्रीन पर कार्रवाई दोहराना कठिन लगता है। हालांकि उन्नत नेटवर्क प्रशासन, पेशेवर सुरक्षा प्रबंधन, कोडिंग या जटिल समस्या निवारण चाहने वाले पाठकों को अधिक विशेषज्ञ स्रोतों की जरूरत होगी, फिर भी मूल कंप्यूटर साक्षरता और विंडोज 11 में स्वतंत्र दैनिक उपयोग के लिए यह एक स्पष्ट, सीमित और यथार्थवादी आरंभिक संदर्भ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं निक वांडो में, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।